नमस्कार भारत, तारीख 5 जुलाई दिन गुरुवार, मैं हूं वात्सल्य राय। ब्रिटेन में नर्व एजेंट से दो लोग गंभीर बीमार, पुलिस का दावा पूर्व रूसी जासूस पर हमले के लिए इस्तेमाल हुआ था ऐसा ही जहर।
The latest update we have from the hospital is that both patients remain in a critical condition.
भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के विरोध में आज विपक्ष का झारखंड बंद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
5000 से अधिक की संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती पूरे राज्य भर में की गई है।
और दुनिया जहान में आदर्श राठौर की पड़ताल, मैक्सिको में कैसे चला वामपंथ का जादू।
वहाँ की जनता जो है, मैक्सिको की जनता जो वहाँ की स्थापित पार्टी है, उनसे पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है।
खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। ब्रितानी पुलिस का कहना है कि विल्टसर में गंभीर रूप से बीमार दो व्यक्तियों में उसी तरह का नर्व एजेंट पाया गया है जो पूर्व रूसी जासूस सरगई स्क्रिपल और उनकी बेटी की हत्या के प्रयास में इस्तेमाल किया गया था। रासायनिक हथियार विशेषज्ञों ने नर्व एजेंट नोविचोक के इस्तेमाल की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे लगे कि पीड़ितों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। बीबीसी संवाददाता गॉर्डन कोरोरा का कहना है कि एक थ्योरी ये भी है कि पीड़ित उस बचे हुए नोविचोक की चपेट में आ गए होंगे जिसका इस्तेमाल मार्च में पूर्व रूसी जासूस और उनकी बेटी पर हमले में किया गया था। सेल्सबरी के सांसद जॉन ग्लेन ने इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, मैं इससे बहुत बहुत चिंतित हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग स्क्रिपल के साथ हुई घटना को लेकर पहले से ही बेहद गुस्से में हैं। हमें जनता को पूरा यकीन दिलाना होगा कि पूरा इलाका नर्व एजेंट से मुक्त और सुरक्षित है। ये थे सेलिसबरी के सांसद जॉन ग्लेन के शब्द। इसराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट में पुलिस की फलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक झड़पें हुई हैं। पश्चिमी तट के बेडोइन गाँव से फलिस्तीनियों का अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस वहाँ पहुँची। इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने वेडोइन में बने घरों को अवैध करार देते हुए उन्हें गिराने का आदेश दिया है। पुलिस के साथ झड़पों में 30 से अधिक फलिस्तीनी घायल हुए हैं। ये गांव यरूशलेम के नज़दीक दो इसराइली बस्तियों के पास स्थित है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक बारूदी सुरंग के विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। जॉर्डन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संयोजक एंड्रेस पेडरसन ने कहा कि जॉर्डन सीमा के नज़दीक आम नागरिक गंभीर खतरे में हैं। उन्होंने कहा, दक्षिण पश्चिम सीरिया में युद्ध के हालात से हम बेहद चिंतित हैं। 19 जून के बाद से यहां से 270,000 से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। जब से जंग शुरू हुई है उसके बाद से ये आंकड़ा सबसे बड़ा है। ये थे संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी एंड्रेस पेडरसन के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से तेल गैस की कीमतें कम करने की मांग की है। ट्रंप ने ट्वीट किया कि तेल कीमतें बहुत अधिक हैं और आरोप लगाया कि इन कीमतों के बढ़ने के पीछे ओपेक का हाथ है। ईरान पर अमरीकी प्रतिबंधों के बाद तेल कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि ट्रंप ने शनिवार को बताया था कि उन्होंने सऊदी अरब के किंग सलमान से तेल उत्पादन बढ़ाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन करने को कहा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मिस्र की सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को स्वीकार कर लिया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी समेत 1,500 से अधिक लोगों को सरकार की आतंकवादियों की सूची से हटाने की मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय ने यह मामला सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेज दिया है। निकारागुआ में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की दंगारोधी पुलिस से भिड़ंत हुई है। ला त्रिनिदाद में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिंसा के दौरान सेना के एक पूर्व अधिकारी की मौत हो गई। ये पूर्व सैन्य अधिकारी कानून व्यवस्था संभालने में पुलिस की मदद कर रहा था। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश की टीम महज 43 रनों पर आउट हो गई है। यह बांग्लादेश का अब तक का न्यूनतम स्कोर है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार भारत की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। ब्रिटेन में नॉर्वेजियन नोविचोक को लेकर एक बार फिर दहशत है। ब्रिटेन की पुलिस का कहना है कि विल्शर में गंभीर रूप से बीमार मिले दो लोगों में ये नर्व एजेंट पाया गया है। इसी तरह के नर्व एजेंट का इस्तेमाल रूस के पूर्व जासूस सर्गेई स्क्रिपल पर हमले के लिए किया गया था। पूरी रिपोर्ट बीबीसी संवाददाता दिनेश उप्रेती से।
ब्रितानी पुलिस का कहना है कि गंभीर रूप से बीमार दंपति के शरीर में जो जहर मिला है वो उसी तरह का नर्व एजेंट है जो पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी की हत्या के प्रयास में इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के मुताबिक रासायनिक हथियार विशेषज्ञों ने नर्व एजेंट नोविचोक के इस्तेमाल की पुष्टि की है। मेट्रोपॉलिटन सहायक पुलिस आयुक्त नील बसु कह रहे थे कि अस्पताल से ताज़ा जानकारी ये है कि पीड़ितों की हालत गंभीर है। दोनों ब्रितानी नागरिक हैं और इलाके के लिए स्थानीय हैं। अधिकारी उनके सगे संबंधियों की पहचान में जुटे हैं। अभी किसी और में इस तरह के लक्षण नहीं दिखे हैं और ये बहुत अहम है। नील बसु ने यह भी कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे लगे कि पीड़ितों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि पीड़ित उस बचे हुए नोविचोक की चपेट में आ गए होंगे जिसका इस्तेमाल मार्च में पूर्व रूसी जासूस और उनकी बेटी पर हमले में किया गया था। जांच एजेंसियों की प्राथमिकता होगी कि वे ये पता लगाएं कि पीड़ित दंपति नर्व एजेंट की चपेट में कैसे आए।
Novichoks are very persistent. They last for a long, long
time. रासायनिक हथियार विशेषज्ञ हमीस ब्रिटन गॉर्डन कह रहे थे कि नोविचोक का असर लंबे समय तक रहता है। दूसरे नर्व एजेंट आमतौर पर कुछ मिनटों और घंटों तक ही असरदार रहते हैं, लेकिन नोविचोक का असर कई महीनों तक रहता है। इसे पहचानना भी बहुत मुश्किल है। इस जहर की दहशत का अधिकारियों को भी बखूबी अंदाजा है और जनता को भरोसे में लेने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। इंग्लैंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी शैली डेविस कह रहे थे कि वे लोगों को फिर से ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सामान्य जनता के इसके चपेट में आने का खतरा बहुत कम बना रहेगा, फिर भी लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कथित तौर पर रूस का बनाया ये खतरनाक नर्व एजेंट नोविचोक एक बार फिर चर्चा में है, पर जांच की दिशा शायद इस बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ न हो।
नॉर्वेजियन को लेकर दहशत के बीच सावधानी बरतने की सलाह। रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती। अगली खबर भारत के राज्य झारखंड से। झारखंड के भूमि अधिग्रहण कानून में हुए बदलाव के विरोध में आज विपक्ष ने बंद बुलाया है। इसे 27 आदिवासी संगठनों और जन संगठनों ने भी समर्थन दिया है। बंद की अपील को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
बारिश और पुलिस की भारी तैनाती के बीच पूरे राज्य में राजनीतिक दलों और जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला और बंद को असरदार बनाने के लिए नारेबाजी की। दरअसल बंद की तैयारी 15 दिनों से चल रही है। गुस्सा बीजेपी की सरकार के खिलाफ है। दरअसल सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन किया है। तब विपक्षी दल और आदिवासी मूलवासी हितों में काम करते रहे जन संगठनों का आरोप है कि सरकार ने पूंजीपतियों और बड़ी कंपनियों के लिए यह कदम उठाया है। पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव। सरकार कानून में संशोधन के जरिए रेल परियोजना, पाइपलाइन, जलमार्ग समेत अन्य आधारभूत संरचना के लिए जमीन लेना चाहती है और इसके लिए सामाजिक सर्वे के प्रभाव को खत्म किया गया है। गौरतलब है कि 2 साल पहले भी सरकार ने आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर छोटा नागपुर काश्तकारी तथा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन की कोशिश की थी। तब सरकार को चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ा था। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन तंज कसते हुए कहते हैं कि उन मामलों में बैकफुट पर जाने के बाद बीजेपी की सरकार ने आदिवासियों मूलवासियों की जमीन छीनने का नया रुख अख्तियार किया है।
ये तो गनीमत था कि इस राज्य में इतना कड़ा कानून था जिसकी वजह से आप लूट नहीं पाए। कोशिश तो आप पहले दिन से कर रहे थे। जिस तरीके से इस राज्य के जनता के भावनाओं को कुचलने का प्रतिशोध आपने देखा, यहाँ के लोगों ने आपको लूटने नहीं दिया।
वहीं बीजेपी के सांसद समीर उरांव इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहते हैं कि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो राज्य हित में उन्होंने कोई काम नहीं किया और अब विरोध की राजनीति कर रहे हैं।
अवसरों का उन्होंने उपयोग नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि उस अवसर को उपयोग करते तो इस झारखंड की जनता का भला होता, उन्नति प्रगति समृद्धि होता, लेकिन वो उन्नति प्रगति समृद्धि नहीं चाहते हैं।
इस बीच राजधानी रांची में अधिकतर प्रबंधन ने 5 जुलाई को स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। हालात से निपटने के लिए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जबकि राजनीतिक संगठनों के सैकड़ों लोगों को नोटिस भेजा गया है। राज्य के गृह सचिव एसके जी राहटे ने बताया है,
बंद के दौरान किसी भी प्रकार की अगर हिंसा होती है तो उसको कारगर तरीके से निपटना है। 5,000 से अधिक की संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती पूरे राज्य भर में की गई है।
सख्त चौकसी और बंद समर्थकों के तल्ख तेवर के मद्देनजर किसी बड़े टकराव या घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर है इसी बहाने सियासत भी गर्माती रहेगी। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
एक संघर्ष दिल्ली में भी चल रहा था, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच। अधिकारों की इस जंग पर कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, लेकिन क्या इस फैसले के बाद दोनों पक्षों के बीच जारी संघर्ष थम जाएगा? हमारे साथी आदर्श राठौर ने वरिष्ठ वकील अवनी बंसल से यही सवाल किया।
प्रश्न ये था कि जो कुछ पिछले महीनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आपकी जो सरकार है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो बीजेपी अपॉइंटेड हैं, उनके बीच में पावर टसल चल रहा था कि किसके पास अधिकार हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक यूनिक स्टेट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये बाकी यूनियन टेरिटरी से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक प्रॉपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, और दिल्ली को जो है वो 1991 के एक्ट के हिसाब से एक अलग स्टेटस दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए एक अलग प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है। तो दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्या अधिकार हैं, और उनमें यदि मतभेद होता है तो किसकी चलेगी, इस पे दो पार्टीज का अलग अलग रुख था और इसलिए ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया।
क्या ये माने हम कि भविष्य में, अब तक जो क्लैश होता रहा, भविष्य में उस तरह का क्लैश नहीं होगा?
यदि आप न्यूज देखेंगे तो दोनों पार्टी के, आपके और बीजेपी के, दोनों के जो स्पोक्स पर्सन है वो मीडिया में आके इस प्रकार की बाइट्स दे रहे हैं कि हम कोर्ट के सामने जीते। तो पहली बात तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है कि भाई कोर्ट में एक्चुअली हुआ क्या, क्या आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा? देखिए, आगे आने वाले समय में होगा या नहीं होगा इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बात तो साफ हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी बातें जो हमारे सामने रखी, किसी भी पार्टी की बात में पूर्ण सत्य नहीं है, जो सत्य है वो दोनों की बातों के मिश्रण में कहीं पर है। कोर्ट ने कहा कि देखिए, दिल्ली को हम प्रॉपर पूरा स्टेटहुड नहीं दे सकते जो आप चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, संविधान के हिसाब से एक यूनियन टेरिटरी ही है, इसे स्टेट नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा, जो बीजेपी की आर्ग्यूमेंट थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं और वो प्रेसिडेंट की अपॉइंटी हैं दिल्ली में और उनकी सारी बात चलेगी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंस की या बीजेपी की इस बात को भी नकारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के संवैधानिक स्टेटस को देखते हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अधिकार है कि वो कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले सकते हैं। यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनका किसी प्रकार का मतभेद होता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उस बात को प्रेसिडेंट तक लेके जा सकते हैं, लेकिन हर मामले में नहीं लेके जा सकते। जब कोई बहुत गहन बात है, जब कोई बहुत सीरियस मुद्दा है, वहां पे यदि दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, केवल उसी स्थिति में जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है प्रेसिडेंट तक मामला लेके जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जानकारी दे रही थी अवनी बंसल।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये बीबीसी की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत। और अब बात किसानों की। केंद्र सरकार ने खरीफ की फसल के लिए किसानों को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का फैसला किया है। इस फैसले से किसानों को कितना फायदा होगा, हमारे साथी आदर्श राठौर ने पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन से यही सवाल किया।
देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिन राज्यों के किसानों का धान गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोक्योर कर लेती हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तो उन राज्यों के धान के किसानों के लिए तो आज बहुत अच्छी खबर है, उनको ज्यादा दाम मिलेंगे 11-13%। लेकिन जो कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी फसलें प्रोक्योर नहीं होती है, मिसाल के तौर पर मक्का है, जो बिहार में हमारे भाई मक्का उगाते हैं, अब उनकी फसल तो प्रोक्योर नहीं होती है, तो इतना मक्का का MSP बढ़ाया, अब उसका फायदा उन तक कैसे पहुंचेगा? ये एक सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और वहाँ के किसान इसका इंतजार कर रहे होंगे, मक्का के किसान, कि सरकार ये बताए कि क्या नीति ऐसी होगी कि उनको भी इस बढ़े हुए MSP का फायदा मिल सके।
समय समय पर ये समर्थन मूल्य रिवाइज होते हैं, तो इसके लिए ये पैमाना क्या मापा जाता है और क्या हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग नहीं होती? मतलब वहाँ पे खर्च होता है किसानों का, वो अलग नहीं होता, तो किस तरह से इसको तय किया जाता है?
कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की एक स्टडी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सारी स्टेट्स में करवाती है। उस स्टडी से हमें मालूम होता है कि किस स्टेट में किसी एक फसल की क्या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, बाकी और फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हुए, CACP जो संस्था है वो भारत सरकार को अपनी संस्तुति देता है कि कितना MSP होना चाहिए, और कोशिश ये होती है कि 70% जो प्रोडक्शन है वो MSP उसको कम से कम कवर कर ले। फिर भी कुछ स्टेट्स ऐसी रह जाएंगी जिसकी कॉस्ट MSP से ज्यादा होगी, तो इसको ध्यान में रखते हुए CACP करता है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि स्टेट्स की कॉस्ट को CACP कंसिडर करता है।
जानकारी दे रहे थे सिराज हुसैन। और इस बीच दिनेश उप्रेती अखबारों को लेकर आ गए हैं स्टूडियो आपको बताने के लिए आज की सुर्खियां। जी दिनेश जी।
जी वासिल जी, दिल्ली पर अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लगभग सभी अखबारों की सुर्खी बना है। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तस्वीर के साथ खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण की हेडलाइन है, कोर्ट ने सरकार को दी प्राथमिकता पर प्रशासनिक मुखिया LG ही। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, LG सुपर बॉस नहीं। अमर उजाला लिखता है, LG नहीं निर्वाचित सरकार ही सुप्रीम। जनसत्ता की हेडलाइन है, संविधान में निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं।
यानी बॉस कौन है, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन लगता है इस बारे में।
हाँ, उसके लिए भाजपा कुछ और दावे करती है तो आप सरकार अपने पक्ष में इस फैसले को बताती है। खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की खबर भी अखबारों के पहले पन्ने पर है। धान का समर्थन मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जबकि मूंग का MSP 1400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।
ये मूल्य कितना किसानों तक पहुंचता है ये अब देखने की बात
है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सभी कर्मचारियों का हर साल ड्रग टेस्ट यानी कि डोप टेस्ट कराने का आदेश दिया है।
जैसा खिलाड़ियों का होता है।
ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। खबर के मुताबिक हर साल होने वाले मेडिकल चेकअप के अलावा ये टेस्ट अलग से होगा, तो ये बताता है कि ड्रग्स की कितनी गंभीर स्थिति है पंजाब में। इंडियन एक्सप्रेस ने महाराष्ट्र में भीड़ की हिंसा के पैटर्न पर एक डिटेल रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ की हिंसा का शिकार हुए लोग अजनबी थे और इन्हें अंधेरे में निशाना बनाया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि जानवरों के भी जीवित व्यक्ति के समान अधिकार हैं। अपनी तरह के पहले आदेश में हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के संपूर्ण प्राणी जगत को अलग शख्सियत माना है, साथ ही उन्हें जीवित व्यक्ति की तरह अधिकारों, दायित्वों और जिम्मेदारियों का कानूनी हक दिया है। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है, जिस पर अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। ये खबर भी कई अखबारों में है।
जी बहुत शुक्रिया दिनेश जी अखबारों की समीक्षा के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
और अब वक्त दुनिया जहान का। मैक्सिको के राष्ट्रपति चुनाव में लेफ्ट विंग के उम्मीदवार आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने जीत हासिल की है। मैक्सिको को पहली बार वामपंथी राष्ट्रपति मिला है। ओब्राडोर को इतना समर्थन कैसे मिला और क्या यह समर्थन उनकी वामपंथी नीतियों के लिए है? दुनिया जहान में हमारे साथी आदर्श राठौर ने इन्हीं सवालों की पड़ताल की है।
दुनिया जहां।
Y esta transformación va a consistir precisamente en arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios.
ये आवाज है मेक्सिको के नए राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर की, जिन्हें लोग आमलो कहकर भी पुकारते हैं। मेक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ओब्राडोर जब प्रचार अभियान चला रहे थे तब उन्हें जोरदार समर्थन मिल रहा था। उनके जोशीले भाषणों को सुनने के लिए भारी भीड़ जुट रही थी। जब चुनाव के नतीजे आए तो पहले दो बार राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना कर चुके ओब्राडोर ने 53.8% वोट हासिल करके चुनाव जीत लिया। 64 साल के ओब्राडोर की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अनाया को सिर्फ 22.8% वोट मिले। लेकिन ब्राजील के साओ पाउलो में रह रहे वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना बताते हैं कि ओब्राडोर की ये जीत अप्रत्याशित नहीं थी।
2006 में मेक्सिको का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वो बहुत ही एक टफ कंटेस्ट हुआ था और उसमें आंद्रेस ओब्राडोर चुनाव हारे थे केवल 0.56% से। उसके बाद 2012 में फिर से इन्होंने चुनाव लड़ा और फिर बहुत ही छोटे मार्जिन से फिर इलेक्शन ये हार गए। लेकिन इस बार चुनाव से पहले इस बात पर लोग मान रहे थे कि आंद्रेस ओब्राडोर चुनाव जीत जाएंगे।
आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर की जीत मेक्सिको के लिए कई मायनों में खास है। 70 सालों तक यहाँ पर दो ही पार्टियों का दबदबा रहा था। कभी रूढ़िवादी नेशनल एक्शन पार्टी का शासन रहा तो कभी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी का। मगर वामपंथी नेशनल रीजनरेशन मूवमेंट पार्टी के नेतृत्व वाले तीन पार्टियों के गठबंधन के उम्मीदवार ओब्राडोर ने इस बार ये सिलसिला तोड़ दिया। मेक्सिको को पहली बार वामपंथी राष्ट्रपति मिला है। आखिर ओब्राडोर को इतना समर्थन मिलने की वजह क्या रही? वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना।
वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, वहाँ पे जो ड्रग्स को लेकर जो समस्या है, जो कि वॉर ऑन ड्रग्स बोलते हैं वहाँ पे, उसमें हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, मारे जा चुके हैं। तो इस तरह से जब आम लोग वहाँ पे आए, लोगों को उन्होंने भरोसा दिया कि उनकी जो नीतियां होंगी वो इन पार्टियों से अलग होंगी, तो लोगों ने उनको सुना और उनको वोट दिया और वो भारी बहुमत से जीत गया।
सेंटर राइट पार्टी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले ओब्राडोर 2002 में वामपंथ से जुड़े थे। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने खुद को सत्ता विरोधी नेता के तौर पर पेश किया और अब तक देश में राज करने वाली पार्टियों को उन्होंने सत्ता का माफिया करार दिया। उन्होंने एकदम वामपंथी और जनवादी नीतियों को लाने का प्रचार किया और बदले में जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। ओब्राडोर की जीत को पूरी दुनिया मेक्सिको में वामपंथी राजनीति के उदय के तौर पर देख रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर करीबी नजर रखने वाले जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर पुष्पेश पंत कहते हैं कि इसे वामपंथ के उदय के बजाय पुनर्जन्म कहना सही रहेगा।
मेक्सिको में भले ही पहली बार वामपंथ इतने जबरदस्त नाटकीय तरीके से सत्तारूढ़ हुआ है, मगर लैटिनी अमेरिका में अगर आप देखें तो क्रांति की एक पुरानी परंपरा है। भले ही वो क्रांति नाम मात्र की रही हो, मगर जज्बा उनका वामपंथी रहा है। लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार पर यदि विजय हो सकती है तो वो वामपंथी पार्टियां ही कर सकती है।
ओब्राडोर को जहां जनसमर्थन हासिल है वहीं उनके विरोधी उनकी नीतियों को लेकर चिंता जताते हैं। उनका मानना है कि ओब्राडोर की लेफ्टिस्ट और पॉपुलिस्ट नीतियां मेक्सिको को वेनेजुएला की राह पर ले जा सकती हैं, जो इन दिनों गहरे आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा है। मगर पुष्पेश पंत मानते हैं कि ओब्राडोर के सामने असल चुनौतियां कुछ और ही हैं।
क्रांतिकारिता का स्वर यहाँ उतना तेज कभी नहीं रहा है मेक्सिको में, जिस तरह का क्यूबा में देखने को मिला है या बोलीविया में देखने को मिला है, और नहीं उस तरह का जुझारू तेवर किसी वामपंथी मेक्सिकाई नेता का था जैसा शेवेज का वेनेजुएला में था। तो ये कल्पना करना थोड़ा मुझे कठिन लगता है कि क्या मेक्सिको उस तरह मोर्चा ले सकता है ट्रंप के अमेरिका से जिस तरह पुतिन ले रहे हैं, क्योंकि मेक्सिको रूस नहीं है और मेक्सिको क्यूबा भी नहीं है। आशाएं बहुत है।
ऐसा नहीं है कि ओब्राडोर को उनकी बातों और वादों के आधार पर ही जनता ने चुन लिया, बल्कि वो न सिर्फ लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय हैं, बल्कि उनकी पहचान एक अच्छे प्रशासक और बुद्धिजीवी की भी है। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि जिस समय पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है, उस दौर में मेक्सिको में वामपंथ को जनता का समर्थन आखिर मिला कैसे? इस सवाल के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार पुष्पेश पंत बताते हैं कि यूरोप या बाकी देशों की तुलना मेक्सिको के साथ नहीं की जा सकती।
हम यदि कहें कि दुनिया भर में दक्षिणपंथी ताकतवर हो रहे हैं, तो जहां तक यूरोप में दक्षिणपंथी पार्टियों का सत्तारूढ़ होने का प्रश्न है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे नस्लवाद की बू आती है।
ओब्राडोर ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान तीन प्रमुख वादे किए थे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ड्रग्स की समस्या सुलझाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। जानकारों का मानना है कि हो सकता है कि अमेरिका वामपंथी आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर पर दबाव डालने की कोशिश करे। उसी समय ओब्राडोर का कड़ा इम्तिहान होगा कि वो कैसे देश की अंदरूनी समस्याओं को भी सुलझाते हैं और इस बाहरी दबाव का भी सामना करते हैं।
उम्मीद है दुनिया जहान का ये अंक आपको पसंद आया होगा, अपनी राय हमें भी बताएं। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। विंबलडन में कल बड़े खिलाड़ियों की जीत के बीच भी उलटफेर होते रहे। शीर्ष वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर कल तीसरे दिन सेंटर कोर्ट पर दूसरे दौर का मैच खेलने उतरे। उनके सामने थे स्लोवाकिया के लुकास लेंचो। फेडरर ने ये मैच 6-4, 6-4, 6-1 से अपने नाम किया। फेडरर के अलावा 13वीं वरीयता हासिल कनाडा के मिलोस रोनिच ने ऑस्ट्रेलिया के जॉन बिलमैन को 7-6, 7-6, 7-6 से हराया। पुरुष वर्ग में ही गेल बॉनफिल्स भी दूसरे दौर की बाधा पार करने में कामयाब रहे। अब बात कल हुए उलटफेर की। महिला वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल डेनमार्क की कैरोलिन वोज़नियाकी रूस की एकातेरिना माकारोवा से 6-4, 1-6, 7-5 से हार कर विंबलडन से बाहर हो गई।
Now the attack from Makarova, can she finish it? Up goes the defensive lob, drive volley, pull away.
कल ही महिला वर्ग में पोलैंड की 32वीं वरीयता हासिल एग्नियस्का रद्वांस्का के आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो गए। उनके रास्ते को रोका गैर वरीयता हासिल चेक गणराज्य की लूसी सफारोवा ने। उन्होंने 7-5, 6-4 से रद्वांस्का का सफाया किया। वैसे महिला वर्ग में कल विलियम्स बहने जीतने में कामयाब रही। उधर वेस्ट इंडीज के दौरे पर पहुंचे बांग्लादेश को कल से एंटीगा में शुरू हुए पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन अपनी पहली पारी को महज 18.4 ओवर में ही 43 रन पर सिमटते देखना पड़ा। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज केमर रोज ने केवल 8 रन देकर 5 विकेट अपने नाम कर बांग्लादेशी बल्लेबाजों का कचूबर निकाल दिया। उनके अलावा मिगुएल कमिंस ने 3 और कप्तान जेसन होल्डर ने 2 विकेट झटके। इसके बाद कल स्टंप के समय वेस्ट इंडीज ने क्रेग ब्रेथवेट के नाबाद 88, डोन स्मिथ के 58 और किरेन पावेल के 48 रन की मदद से 2 विकेट खोकर 201 रन बनाए और 158 रन की बढ़त भी हासिल कर ली। वैसे बांग्लादेश का टेस्ट क्रिकेट में किसी पारी में ये सबसे कम स्कोर है।
और विदा लेने के पहले मुख्य समाचार दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। ब्रितानी पुलिस का कहना है कि विल्टसर में गंभीर रूप से बीमार दो व्यक्तियों में उसी तरह का नर्व एजेंट पाया गया है जो पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी की हत्या के प्रयास में इस्तेमाल किया गया था। इसराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट में पुलिस की फलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक झड़पें हुई हैं। सीरिया में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक बारूदी सुरंग के विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से तेल गैस की कीमतें कम करने की मांग की है। मिस्र की सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को स्वीकार कर लिया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी समेत 1,500 से अधिक लोगों को सरकार की आतंकवादियों की सूची से हटाने की मांग की गई है। निकारागुआ में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की दंगारोधी पुलिस से भिड़ंत हुई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश की टीम महज 43 रनों पर आउट हो गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार। भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। फेसबुक प्रसारण में मदद की प्रशांत चहल ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।